ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शराब सप्लाई और रेगुलेशन पर सीएजी रिपोर्ट 20 अप्रैल तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। नीति आयोग ने मोटर वाहन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी सशक्त बनाना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 अप्रैल तक बढ़ी। पूर्वी दिल्ली में कल सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिल्ली पुलिस जन सुनवाई करेगी। और नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आज से अयोध्या पर्व 2025 शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज शराब की सप्लाई और रेगुलेशन पर महालेखा परीक्षक सीएजी रिपोर्ट 20 अप्रैल तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने 30 अप्रैल तक बाकी सभी सीएजी रिपोर्टों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। श्री गुप्ता ने ये निर्देश आज विधानसभा सचिवालय में सीएजी की रिपोर्टों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अजय महावर, सरकारी उपक्रमों पर समिति के अध्यक्ष गजेंद्र ड्राल, अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा दिल्ली की महालेखाकार रोली शुक्ला मालगे उपस्थित रही। बैठक में महालेखा परीक्षक द्वारा नवीनतम ऑडिट रिपोर्टों की प्रमुख टिप्पणियों और निष्कर्षों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके बाद ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम के क्रियान्वयन की स्थिति तथा दिल्ली विधानसभा के द्वितीय सत्र के दौरान प्रस्तुत रिपोर्टों से संबंधित एक्शन टेकन नोट्स पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित समितियों और विभागीय अधिकारियों ने ऑडिट सिफारिशों के प्रभावी अनुपालन के लिए संस्थागत समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। एक रिपोर्ट।
बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ऑडिट टिप्पणियों पर समयबद्ध कार्रवाई के महत्व को रेखांकित किया। इसके अलावा उन्होंने शासन में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु मजबूत तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन है। हम अपना एप्लीकेशन भी तैयार करवा रहे हैं, उसमें समय लगेगा और 6 महीने का, लेकिन मीन वाइल क्योंकि हमें काम को आगे बढ़ाना है तो अभी हम भारत सरकार को लिख रहे हैं उस संबंध में।
बैठक के दौरान यह संकल्प लिया गया कि दिल्ली में सुशासन और जन उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने के लिए नियंत्रण प्रणालियों को और अधिक मजबूत किया जाएगा और ऑडिट से संबंधित मुद्दों का शीघ्र समाधान भी सुनिश्चित किया जाएगा। श्री गुप्ता ने कहा कि इस बैठक का लक्ष्य था कि मानसून सत्र के समय लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट के साथ सदन में प्रतिवेदन पेश करेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद कुमार।
नीति आयोग ने आज मोटर वाहन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। एक रिपोर्ट।
रिपोर्ट में भारत के मोटर वाहन क्षेत्र का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है तथा वैश्विक मोटर वाहन बाजारों में भारत को एक प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम की उपस्थिति में रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक मोटर वाहन निर्माण लगभग 9 करोड़ 40 लाख यूनिट तक पहुंच गया। भारत लगभग 60 लाख वाहनों के वार्षिक निर्माण के साथ चीन, अमेरिका और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक मोटर वाहन निर्माता बन गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय मोटर वाहन क्षेत्र ने विशेष रूप से छोटी कार और उपयोगिता वाहन खंडों में मजबूत घरेलू और निर्यात बाजार में उपस्थिति दर्ज की है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मेक इन इंडिया और इसकी लागत प्रतिस्पर्धी कार्यबल के साथ भारत मोटर वाहन विनिर्माण और निर्यात के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं मुकेश कुमार।
इस अवसर पर श्री बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए विस्तृत विश्लेषण किया गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मोटर वाहन बाजार 20 खरब डॉलर का है और इसमें भारत की हिस्सेदारी 70 अरब डॉलर है। पूर्वी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में कल सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिल्ली पुलिस जन सुनवाई करेगी। इन क्षेत्रों में मधु विहार, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर और कल्याणपुरी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के पूर्वी जिले के उपायुक्त ने जनता से अनुरोध किया कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव अधिकारियों के सामने रखें। उन्होंने आश्वासन दिया कि लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान प्रदान किया जाएगा। हनुमान जयंती के त्योहार के मद्देनजर कल सुबह 7 बजे से शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात प्रतिबंध और परिवर्तन लागू रहेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि इस दौरान ISBT कश्मीरी गेट के पास SPM मार्ग और रिंग रोड जैसे प्रमुख मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुराना लोहे के पुल और GPO चौक समेत अन्य स्थानों पर विभिन्न जुलूस और कार्यक्रमों के कारण यहां यातायात प्रवर्तित किया जाएगा। राजधानी में अप्रैल और मई के दौरान IPL के आगामी मैचों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपनी सभी लाइनों पर अपनी अंतिम ट्रेन के समय में बदलाव किया है। मैच खत्म होने के बाद नई दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम के नजदीकी मेट्रो स्टेशनों पर अचानक भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी लाइनों पर अंतिम ट्रेन के समय में लगभग 1 से 2 घंटों का विस्तार होगा। इस दौरान मैच के दिन 76 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप लगाई जाएंगी। अधिक जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल निगम की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल और इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति विनय कुमार सक्सेना ने आज बताया कि राजधानी के नरेला में प्रस्तावित एजुकेशनल हब के लिए इस साल के बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो दिल्ली सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है। श्री सक्सेना ने ये जानकारी इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के द्वारका कैंपस में आयोजित 17वें दीक्षांत समारोह में दी। इस अवसर पर स्नातक से PhD तक के कुल 20,456 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। इनमें से 74 छात्रों को स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री सक्सेना ने कहा कि अब उनके कंधों पर पूरे समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारी है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि सरकार की प्राथमिकता राजधानी की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी भागीदारी से ही विकसित दिल्ली या विकसित भारत का लक्ष्य पाया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि डिग्री सही मायने में विद्यार्थियों के संघर्ष की गाथा है और उनके जीवन की असली परीक्षा अब शुरू होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और इटली विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली साझेदारी को व्यापक रणनीतिक संबंध में बदलने के लिए काम कर रहे हैं। श्री गोयल ने नई दिल्ली में आज इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।
श्री गोयल ने कहा कि व्यापक रणनीतिक संबंध वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार 15 अरब डॉलर होने की संभावना है। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और शिक्षा सहित सहयोग के कई क्षेत्र हैं। इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी ने कहा कि आज भारत और इटली के बीच सहयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने बहुत सकारात्मक रणनीतिक बैठकें की। अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नेहा गोस्वामी।
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक विद्यार्थी स्नातक, पीजी, पीजी डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट के पाठ्यक्रमों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक 14 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अपने आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं। जामिया के कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ ने बताया कि अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया गया है ताकि देश के दूर दराज क्षेत्रों के आवेदकों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और उन्हें आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त हो। ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म प्रवेश पोर्टल admission.jmi.ac.in पर उपलब्ध हैं। राजधानी के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान इस महीने की 25 तारीख को कराया जाएगा। इसी दिन शाम से मतों की गिनती होगी और 28 अप्रैल को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में आज आधिकारिक अधिसूचना जारी की। दिल्ली मंडल के रेल प्रबंधक पुष्पेश रमण त्रिपाठी ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कुली से स्टेशन पर बातचीत की। उत्तर रेलवे ने बताया कि इस बातचीत का उद्देश्य रेलवे प्रशासन और सहायकों के बीच संबंधों को मजबूत करना था। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक ने उनके सुझावों को सुना और उन्हें उनके कल्याण के लिए रेलवे की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। मंडल रेल प्रबंधक ने सहायकों के विश्राम गृह में सुविधाओं में सुधार सहित विभिन्न कल्याणकारी पहलों पर चर्चा की। श्री त्रिपाठी ने बताया कि सहायकों को प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को लाभ होगा और साथ ही ये सहायकों के दैनिक जीवन में भी उपयोगी साबित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति, कला और भक्ति में अयोध्या के महत्व को दर्शाने के लिए नई दिल्ली के जनपथ स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आज से अयोध्या पर्व 2025 मनाया जा रहा है। इस 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव में भक्ति, शास्त्रीय परंपराओं और संवाद का संगम मौजूद है, जिसमें देश भर के संत, सांस्कृतिक विचारक, नीति निर्माता, विद्वान और कलाकार एक साथ भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
भारत के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सवों में से एक अयोध्या पर्व की शुरुआत आज एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुई। सुंदरकांड और बड़ी है अयोध्या नामक दो विशेष प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। इस अवसर पर प्रसिद्ध चित्रकार एवं पद्मश्री वासुदेव कामत द्वारा भगवान श्री राम पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम नामक कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी का अनावरण किया गया। वहीं आने वाले दिनों में भारतीय समाज और संस्कृति पर संगोष्ठियां और बौद्धिक तथा कलात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा तबला वादन, कथक, भरतनाट्यम और लोक गायन की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। अयोध्या पर्व 2025 के माध्यम से भारतीय कला और आध्यात्मिकता को नए सिरे से लोगों के सामने पेश किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज दिल्ली विधानसभा परिसर में दिव्यांग चित्रकला समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि बाबा साहब का जीवन समाज को संघर्ष, धैर्य और आत्मबल का पाठ पढ़ाता है। श्री गुप्ता ने कहा कि बाबा साहब का योगदान सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में भी अमूल्य है। वहीं दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज ने बताया कि इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों के लिए चित्रकला समारोह का आयोजन किया गया, उनकी कला को उभार कर सामने लाने के लिए किया गया है। श्री इंद्राज ने कहा कि अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पूरे सप्ताह को सेवा के रूप में मनाया जाएगा। दिल्ली नगर निगम के महापौर और उपमहापौर का चुनाव 25 अप्रैल को निगम की साधारण अप्रैल सभा के दौरान होगा। ये सभा नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित अरुणा आसिफ अली सभागार में आयोजित की जाएगी। दिल्ली नगर निगम के महापौर महेश खीची ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर निगम के कमिश्नर अश्विनी कुमार को हटाने की मांग की है। अपने पत्र में श्री खीची ने उनकी जगह नए एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति के लिए आग्रह किया है। दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप होने से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि शाम के समय शहर के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और आंधी के बाद गर्मी से तापमान में कमी आई और लोगों को राहत महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.9 डिग्री अधिक 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शराब सप्लाई और रेगुलेशन पर सीएजी रिपोर्ट 20 अप्रैल तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। नीति आयोग ने मोटर वाहन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी सशक्त बनाना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 अप्रैल तक बढ़ी। पूर्वी दिल्ली में कल सुबह 11 बजे से पुलिस जनसुनवाई करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।